Krishna, Hare Krishna,
Krishna, Hare Krishna,
Krishna, Krishna, Hare Hare,
Krishna, Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama,
Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare,
Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna. पहला स्कंद श्रीमद् भागवत का हम डिस्कस कर रहे थे. पहले तीन अध्यायों में सूत गोस्वामी और सनक संवाद है. सनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछते हैं, उसके उत्तर में पूरा भागवत है असल में. और दूसरे 3 अध्याय 4, 5 और 6 में व्यासदेव और नारद के बीच में संवाद है. संवाद भगवत गीता को बोलते हैं कृष्ण अर्जुन संवाद. संवाद का अर्थ होता है गुरु और शिष्य के बीच में परम सत्य को समझने के लिए बातचीत. और विवाद का अर्थ होता है दो आदमी झगड़ा करें. संवाद का दूसरा उल्टा है विवाद. दुनिया में सब विवाद होता है और विवाद को कहते हैं बकवाद. विवाद उसका अपभ्रंश बकवाद. बकवाद में बेकार बोलना. संवाद ठीक होता है, बाकी सब बकवाद है. तो संवाद, संवाद सम्यक रूप से ठीक तरह से सत्य को समझने के लिए गुरु और शिष्य के बीच में बात होती है, अथवा दो शिष्य बैठ के आपस में भगवान को समझने के लिए, सत्य को समझने की चर्चा करते हैं, उसको संवाद बोलते हैं. तो ये दो संवाद हैं. और उसके बाद मुख्य भागवत का मुख्य श्रोता कौन है, मुख्य सुनने वाला कौन है, और वो है परीक्षित महाराज. उसने केवल भागवत भगवत प्राप्ति के लिए ही सुनी थी. सनक आदि ऋषि भागवत क्यों सुन रहे हैं? यज्ञ करके शाम को भागवत सुनना तो यज्ञ का एक अंग है. करना यज्ञ है, मुख्य यज्ञ काम है उनका मुख्य. लेकिन सायंकाल का एक घंटा बचता है, थोड़ी कथा सुन लेंगे तो खाना पूर्ति है. इसको बोलते हैं खाना पूर्ति. यज्ञ का काम पूरा हो गया, अब थोड़ा टाइम बचता है तो कथा सुन. तो कथा उनका मुख्य उद्देश्य नहीं था भागवत. ऐसे व्यास का भी भागवत कोई मुख्य उद्देश्य नहीं था. और लोक चिंता थी कि वेदों से सब कुछ, वेदों का वर्णन करने के बाद मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्या करूं. तो नारद जी ने भी उनको भागवत का उपदेश दिया. तो मुख्य उद्देश्य भागवत श्रवण नहीं था वहां. लेकिन परीक्षित तो सिर्फ इसलिए गया था कि मुझे क्या करना चाहिए, 7 दिन मेरे पास है. और भागवत श्रवण ही उसका मुख्य उद्देश्य था, और कोई उद्देश्य नहीं था. तो मुख्य श्रोता भागवत का परीक्षित है. इसलिए नवदा भक्ति में जब श्रवण का उदाहरण देते हैं तो परीक्षित महाराज का नाम आता है. केवल श्रवण से भगवत प्राप्ति किसने की? परीक्षित. तो ये कल बात इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे. परीक्षित की महिमा को, महानता को दर्शाने के लिए, ग्लोरीफाई करने के लिए 12 अध्याय. कल हमने परीक्षित के मातृ कुल का वर्णन किया था. मातृ कुल में माता की साइड में 3 जनरेशन भक्त हैं, कुंती, द्रौपदी और उत्तरा, परीक्षित की माता. तो जब संस्कार 3 जनरेशन में आता है तब कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेनी में आती है. इसलिए कहीं भक्त कहते हैं 3rd जनरेशन स्कान की आएगी तब हम वर्ल्ड को कांकर करेंगे. दिस इज सम पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू मेडिटेट लाइक दिस. भाई पहली जनरेशन तो 18-19-20 साल के बच्चे मिले, तो पहले संस्कार तो दूसरे थे, फिर उसके ऊपर बनाना पड़ा सीढ़ी, तो बेस कच्चा है. दूसरे में हमने प्रयास किया बच्चों को पढ़ाने ला, बच्चों पढ़ नहीं रहे बच्चे. अब देखें तीसरी जनरेशन के ऊपर होपफुल है हमके. तो 3 जनरेशन का कल्चर था, 1 जनरेशन का कल्चर नहीं, 3 जनरेशन का कल्चर था. और तीनों महान नारियों का प्रार्थना भागवत में पहले दिया गया है. यह भी बहुत भागवत की विशेषता है कि प्रार्थना उत्तरा की, कुंती की और द्रौपदी की प्रार्थना पहले ही है 7वें अध्याय में और 8वें अध्याय में. अब आज परीक्षित के पितृकुल के ऊपर चर्चा करेंगे. पितृकुल में वर्णन है भीष्म देव का. पहले जो पूर्वजों में ऐसा विशेष व्यक्ति भीष्म है, जो साधारण संसार का किसी आम आदमी का बेटा नहीं है, माता गंगा का पुत्र है. गंगा जिसमें स्नान करने से लाखों लोग पवित्र होते हैं, उसका पुत्र कितना पवित्र होगा। लोग गंगा में पवित्र होने जाते हैं और ये गंगा का पुत्र है, और इसकी शिक्षा और दीक्षा देवताओं के पास हुई है, आदमी के पास नहीं हुई है। परशुराम इसका गुरु है, जो भगवान का अवतार है, तो ये सामान्य मानव नहीं है। और वैसे भी ये वसु है, और हमारे 12 महाजनों में एक महाजन है, भीष्म महाजन है, तो साधारण व्यक्ति तो नहीं हुआ ना। पांडु, पांडु कौरव वंश और पौरव वंश का नहीं है, पांडु व्यास का बेटा है, पांडु वेदव्यास का पुत्र है, और वेदव्यास भगवान का अवतार है। तो पांडु भी कौरव वंश से अलग हो गया, क्योंकि व्यासदेव का पुत्र है। ये 3 पुत्र व्यासदेव के, पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर। और पांडव के 5 पुत्र भी देवताओं का अंश है, अर्जुन इंद्र का अंश है, और भगवान का नित्य सखा है, भगवान का नित्य सखा है, नित्य सखा है, एक जन्म का नहीं। और युधिष्ठिर महाराज धर्मराज है, भीम वायुदेव वायु का अंश है, तो ये साधारण कोई मानव नहीं है। तो इसका पितृकुल कितना महान है ये देखने का है। और फिर अर्जुन का बेटा, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु सुभद्रा का बेटा है, जो भगवान श्री कृष्ण की बहन है, योगमाया है, अभिमन्यु योगमाया सुभद्रा का बेटा है, तो ये साधारण संसार का व्यक्ति नहीं है। और उसको उसको भक्ति करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ा, अपने आप भगवान श्री कृष्ण के घर में उसको रहने का मौका मिला, और वहीं द्वारका में उसने शिक्षा दीक्षा उसकी हुई है भगवान के। और कितना प्रतिभाशाली था कि मां के उदर में ही उसने अर्जुन से चक्रव्यूह भेदन सीख लिया था। तो कितना, तो अभिमन्यु की महानता कितनी है कि जन्म से पहले उसके शिक्षा ग्रहण कर ली थी माता के उदर में। और फिर वो अभिमन्यु अकेला किशोर अवस्था में 16 साल का 6 महारथी उसके महारथियों के साथ अकेला लड़ा था महाभारत में। तो ये पुत्र पितृ कुल का वर्णन है परीक्षित का। तो इतनी सारी जनरेशन परीक्षित के पूर्वजों की भगवान के भक्त, और ये सारे कृष्ण भक्त हैं। और भागवत में विशेष रूप से पहले भीष्म पितामह का भागवत साक्षात्कार भगवान के सामने शरीर त्यागने का वर्णन है, फिर धृतराष्ट्र का भी उद्धार का वर्णन है, फिर पांडवों के भी उद्धार का वर्णन है, 5 पांडव परित्याग करके जाते हैं। तो जिसके दादा परदादा धृतराष्ट्र जैसे भी मुक्त हो सकते हैं, उस परीक्षित के लिए मुक्ति का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो ये दिखाना है, दर्शाना ये है। और फिर स्वयं परीक्षित की क्या महानता है कि जन्म से पहले भगवान का दर्शन किया है, मां के उदर में भगवान का उसने दर्शन किया है, कलयुग के ऊपर विजय प्राप्त की है, और दिव्य दृष्टि इतनी है कि गाय और बैल के रूप में पहचान लिया कि ये धरती और धर्म है, ये दिव्य दृष्टि है उसके पास। और भगवान बचपन से भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, छोटा बच्चा था तो कृष्ण डाल से ही खेला करता था परीक्षित। तो ये परीक्षित का विशेषता है। तो आइए पहले भीष्म देव की आज महानता को, महिमा को भागवत के पन्नों से देखेंगे। महाभारत युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर रोने लगा, क्या हो गया, मेरे कारण असंख्य लोग मारे गए, कई स्त्रियां विधवा हो गई, कितनों के बेटे मारे गए, मैं इस पाप का प्राश्चित कैसे करूंगा, ये राज मुझे मिला है कितने लोगों को मारने के बाद मिला है। आश्चर्य तो ये है, जिस चीज के लिए अर्जुन युद्ध से पहले रो रहा था, युधिष्ठिर महाराज युद्ध के बाद वही बात कर रहा है। इसलिए अर्जुन क्वालिफाइड था गीता को सुनने के लिए, होने से पहले उसको पता था क्या होने वाला है। अर्जुन, लेमेंटेशन ऑफ अर्जुन वॉज बिफोर वॉर, एंड कृष्णा बाय स्पीकिंग भगवद गीता ही क्लियर द माइंड ऑफ अर्जुना एंड ऑल इल्यूजन एंड लेमेंटेशन इज गॉन। और युधिष्ठिर महाराज इज लेमेंटिंग आफ्टर द वॉर इज ओवर, अब पछता है क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत, अब मर गए, अब रोने से क्या होगा। तो ये परीक्षा, युधिष्ठिर महाराज अब कह रहे क्या होगा, और फिर कहते हैं, आप कहते हैं यज्ञ करो, यज्ञ से पाप धुल जाएगा, शराब के बर्तन को शराब के अंदर धोने से कोई बर्तन साफ थोड़ी होगा। और मिट्टी में गंदे चीज को मिट्टी के अंदर धोने से थोड़ी साफ होगा, इज गिविंग लॉजिक। भगवान श्री कृष्ण ने उसको समझाने का प्रयास किया, व्यास देव ने उसको कन्विंस करने का प्रयास किया, धौम्य ऋषि ने प्रयास किया, देवर ट्राइंग व्यास देव कृष्ण हिमसेल्फ। युधिष्ठिर किसी की बात मानने को तैयार नहीं है, राज करने को तैयार नहीं है। अरे इतने बड़े युद्ध के बाद राज लेने के लिए युद्ध किया था, धर्मराज को राज देना था, अब कहते मैं राज नहीं करूंगा। अर्जुन ने तो कहा लड़ाई नहीं करूंगा, और ये कहता राज ही नहीं करूंगा। इसमें ऐसे लिखा है आचार्यों ने कि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में युधिष्ठिर के हृदय में कह रहा था, जो मैं कह रहा हूं तुम मत मानना, और बाहर से कह रहे हैं तुम मेरी बात मान लो। ये भी भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत बड़ा लीला है। क्यों ऐसे कर रहे थे? वो भगवान कोई भी श्रेय अपने ऊपर नहीं लेता है। भगवान ग्लोरी ही दे, कृष्ण डोंट वांट टू बी ग्लोरीफाइड हिमसेल्फ, ही वांट टू ग्लोरीफाई हिज डिवोटी। आज कृष्ण के मन में भीष्म पितामह को ग्लोरीफाई करना है कि वो युधिष्ठिर जिसको व्यास नहीं समझा सका, कृष्ण और धौम्य नहीं समझा सके, भीष्म पिता ने समझा दिया, तो भीष्म का नाम पूरे विश्व में गाया जाएगा। आज भगवान अपने एक भक्त भीष्म देव को ग्लोरीफाई करना चाह रहे हैं, श्रेय देना चाह रहे हैं। और तब ऐसे भाव कहीं लिखे हैं, कृष्ण थोड़ा ध्यान में बैठा था तो युधिष्ठिर आश्चर्य से कहते, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? दुनिया तो आपका ध्यान करता। बोला, मेरा भक्त भीष्म मेरा ध्यान कर रहे हैं। इससे संकेत यह मिलता है कि जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान बड़ा सावधानी से हमारा ध्यान करते हैं। इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारा चैंटिंग में मन लही नहीं लगता है, तो वी आर नॉट मच कृष्ण कॉन्शियस एज मच एज कृष्ण इज डिवोटी कॉन्शियस। कृष्ण इज मोर डिवोटी कॉन्शियस देन ए डिवोटी इज कृष्ण कॉन्शियस, दिस इज ट्रूथ। 10 बार ज्यादा कृष्ण डिवोटी कॉन्शियस है। तो आज भीष्म पितामह कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं तो कृष्ण भीष्म पितामह का ध्यान कर रहे हैं। कृष्ण इज मोर डिवोटी कॉन्शियस देन डिवोटी इज कृष्ण कॉन्शियस। हम अपनी बुद्धि से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, उसकी कृपा से ही भगवान की प्राप्ति होगी। तो युधिष्ठिर को कहते चलो चलिए तैयारी करो, कुरुक्षेत्र के उस स्थान पे चलना है जहां भीष्म पितामह सरसैया के ऊपर, बेड ऑफ एरोज के ऊपर उत्तरायण आने का प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब वो शरीर त्यागेंगे। ये सन का मूवमेंट उत्तरायण और दक्षायण है होती है, तो उत्तरायण ऑस्पिशियस है एंड भीष्म वाज वेटिंग फॉर कपल मंथ्स। आप में से कुरुक्षेत्र का दर्शन कितने लोगों ने किया है? कुरुक्षेत्र की यात्रा भी कभी करनी चाहिए। कुरुक्षेत्र में वो स्थान है जहां गीता बताई गई थी, तो वहां एक बड़ा वट वृक्ष है, ज्योतेश्वर उसको कहते हैं, ज्योतेश्वर, यहां गीता की ज्योति का प्रकट्य हुआ था। कृष्ण ने वहां उस जगह पे रथ को खड़ा करके गीता बताई थी, और वहां से 1 किलोमीटर दूरी के ऊपर वो स्थान है जहां भीष्म गंगा है, अर्जुन ने बाण मारकर गंगा को प्रकट किया था, और वहीं एक मंदिर है भीष्म पितामह सरसैया के ऊपर सोया हुआ, उस वो स्थान है। और फिर वो सरोवर है जिसमें भगवान श्री कृष्ण आए थे सूर्य ग्रहण में स्नान करने के लिए, ब्रह्म सरोवर। तो ये कुरुक्षेत्र तीर्थ स्थान बहुत बड़ा रहा है द्वापर युग का, और तो कोई दूर नहीं है दिल्ली से, जाओ तो जाके सुबह और शाम को आ भी सकते हैं, लेकिन जाके कभी इन जगहों का दर्शन करना चाहिए। वो समंतक पंचक जिसको कहते हैं, बड़ा सरोवर, उसमें नहाना, ये सब अभी भी अवेलेबल है कुरुक्षेत्र। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, लोग कहते हैं भगवद गीता एलोगरिकल एरोगरिकल, कुरुक्षेत्र आज भी तो पड़ा है वो जगह जहां युद्ध हुआ था, तो स्थान आज भी देखा जा सकता है। आज भीष्म पितामह ने यह संकल्प किया है, इच्छा मृत्यु का वरदान है भीष्म पितामह को। पितृ भक्त दुनिया के अंदर जब कोई पिता का भक्त, मातृ भक्त तो बहुत मिलेंगे, पितृ भक्त भीष्म पितामह एक अद्भुत पितृ भक्त है, अनमैचेबल, ए डिवोटी ऑफ ए फादर। पहले नंबर का शिष्य किसको बोलते हैं? शिष्य और पुत्र में कोई अंतर नहीं होता है, शास्त्रीय भाषा में पुत्र एंड शिष्य आर समान, द सन एंड डिसाइपल आर इक्वल। पुराने जमाने में सन इज मेड डिसाइपल, व्यास देव ने सुखदेव को अपना शिष्य बनाया था, बेटा था। तो सन एंड डिसाइपल आर सेम, कंसीडर सेम। तो फर्स्ट क्लास डिसाइपल कौन है, फर्स्ट क्लास पुत्र कौन है? पिता के कहने से पहले उसका काम कर ले, जिसके लिए हम कहते हैं श्री चैतन्य मनोअभिष्टं, रूप गोस्वामी को कहते हैं कि गुरु के मन की इच्छा को शिष्य जान ले और गुरु के कहने से पहले काम संपन्न कर ले, फर्स्ट क्लास डिसाइपल उसको बोलते हैं। श्री चैतन्य मनोअभिष्टं कहे, श्री चैतन्य के मन के अभिष्ट को जान गए। ये कौन सी जगह, ये मानो में ये श्लोक कब बोला गया, क्यों बोला गया मनोअभिष्ट का? क्या चीज चैतन्य महाप्रभु के मन में थी जो रूप गोस्वामी जान गए थे, किसी को याद है? रथ यात्रा के सामने चैतन्य महाप्रभु ने एक गान किया, ही सेंग समथिंग विच लुक लाइक मंडेन। एक लवर और लव्ड का जैसे कोई गीत हो प्रेम का, वो चैतन्य महाप्रभु ने गाया। क्या कहा? मैं भी वही, मेरा प्रीतम भी वही, आज फिर मिले हैं, लेकिन जैसे पहली बार हम मिले थे वो सुख नहीं मिल रहा है। और दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी से मिलने गए, कहां? हरिदास ठाकुर की कुटिया पे, वहां रुका हुआ था। रूप गोस्वामी कहीं गए हुए थे, एक कागज कुटिया के घास के बीच में ऐसे अटका हुआ था। चैतन्य महाप्रभु ने कागज को निकाला, उसके ऊपर श्लोक लिखा हुआ था। चैतन्य महाप्रभु देखे, लिखा है हाउ कैन ही नो माई माइंड, मेरे मन को कैसे जान सकता है? और स्वरूप दामोदर देखो तो क्या लिखा है। स्वरूप दामोदर ने कहा आपने की कृपा होगी तब आपका मन जान सकता है। और क्या रूप गोस्वामी ने क्या लिखा था? राधा रानी कहती है मैं भी वही, कृष्ण भी वही, पहले जमुना के तट पे कदम के वृक्ष के नीचे मिले थे, आज फिर कुरुक्षेत्र में मिल रहे हैं, कृष्ण भी वही है, मैं भी वही हूं, लेकिन वो सुख नहीं मिल रहा है। ये चैतन्य महाप्रभु का भाव रथ यात्रा में था, कि रथ यात्रा में कुरुक्षेत्र से वृंदावन ले जाने की गोपियों का जो भाव है, तो ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु के मन के भाव को जानकर रूप गोस्वामी ने लिखा था। राधा रानी का भाव था कि मैं भी वही, कृष्ण भी वही, पहले तो जमुना के तट पे मिले थे, कदम के वृक्ष नीचे मिले थे, तब जो आनंद था सर्द की रात में, आज वो कुरुक्षेत्र में, ये तो राजा महाराज की तरह रथ के ऊपर चढ़ के आया है, इतने सारे इसके सेवक खड़े हैं, हमको वो सुख नहीं मिल रहा है। तो महाप्रभु इसलिए इस रूप गोस्वामी के लिए प्रार्थना मंत्र हो गया चैतन्य महाप्रभु के मन को जानने वाला। तो जो मन को जानता है, वन हू नोज द माइंड, और जो कहने के बात करे वो सेकंड नंबर का डिसाइपल या बेटा, कहो काम कर ले, और कहने के बाद भी नहीं करे वो थर्ड क्लास का। तो इस क्लास में बहुत सारे आते हैं, थर्ड क्लास टाइम नहीं है, बाद में आऊंगा करके देख लेंगे, बाद में सोचेंगे। तो भीष्म पितामह उस कैटेगरी में आता है। एक दिन उनका पिता शांतनु चिंता कर रहा था, घर में आया कहीं से, एंड ही वॉज लिटिल वरिड। भीष्म पितामह ने अपने पिता से नहीं पूछा। अभी नाम इनका भीष्म नहीं है, देवव्रत है। देवव्रत ने सारथी से जाके पूछा कि पिताजी कहां से आ रहे हैं? बोला गंगा के तट से आ रहे हैं। किससे मिले थे? बोला एक फिशरमैन से मिले थे। भीष्म पितामह चला गया फिशरमैन के पास। बोला हमारे महाराज यहां आए थे? बोला आए थे। क्या बात की? बोला हमारी बेटी को विवाह के लिए मांग रहे थे, शादी के लिए। बोला फिर आप तो भाग्यशाली हो, योर डॉटर विल बी द क्वीन, वो तो बड़ी महारानी बन जाएगी। बोला मैं जानता हूं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। बोला क्यों? बोला मेरी बेटी का बेटा राजा नहीं बन सकता, ही कैन नॉट बी किंग। भीष्म पितामह व्हाई? बोला तुम जो बड़े बेटे उसके बेटे हो, यू आर देयर भाई, एल्डर जो होगा सन वही किंग बनेगा ना, तो आप तो देवव्रत हो जाए ना, किंतु मेरा तो बेटी का बेटा किंग नहीं बनेगा। तो भीष्म ने कहा मैं आपको वचन देता हूं कि मैं राज नहीं लूंगा। तो फिशरमैन कहता है आई बिलीव योर वर्ड्स, आप सत्यवादी हैं, आपका वचन मैं मानता हूं, लेकिन आप तो शादी करेंगे ना, फिर आपका बेटा होगा वो क्लेम करेगा, भाई मैं बड़े बेटे का हूं तो मेरा राज होना चाहिए ना। तब देवव्रत ने हाथ ऊपर करके कहा कि देवताओं दिशाओं सुन लो, आज मैं गंगा पुत्र ये वचन करता हूं मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। उस वक्त आकाशवाणी से आवाज आया भीषम भीषम, इसकी प्रार्थना इसका इसका जो प्रतिज्ञा है बहुत भीषण है, तब से उनका नाम भीषम हो गया। तब तक उसका नाम भीषम नहीं था, देवव्रत आज भीषम बन गया। लेकिन ब्रह्मचारी जंगल में रहना आसान है, कंदमूल खा के ब्रह्मचारी रह सकता है, लेकिन राजमहल के अंदर रसगुल्ले खा के ब्रह्मचारी रहना बहुत मुश्किल है। और भीषम पिता मैं राजमहल में रह रहा था, बहुत मुश्किल काम था। और भीषम पितामह के ब्रह्मचार्य व्रत को भंग करने के लिए एक दिन तो मां ने कह दिया, सत्यवती माता ने कहा, बेटा अब तो तुम्हारे दोनों भाई चल बसे, चित्रंगद और चित्रवीर, उनकी दोनों पत्नियां, कोई संतान नहीं है, अब तुम कर विवाह कर लो, नहीं तो हमारा कुल कैसे चलेगा। मेरे लिए आपने मेरे लिए तो वचन दिया था ना मेरे विवाह के लिए कि मेरा पोता मेरा बेटा हो, इसलिए अब मैं ही आपको मुक्त करती हूं वचन से। बोला मां मैंने वचन कर दिया वो कर दिया, अब तो भीषम ब्रह्मचारी ही रहेगा। तो मात्र मां मां गुरु है पहला, भीषम पितामह ने नहीं मानी ये बात। और फिर भीषम पितामह के गुरु परशुराम को जाकर अंबा, तीन लड़कियां भीषम पितामह काशीराज की लाया था, दो का तो विवाह करा दिया दो भाइयों से, तीसरे ने बोला मैं नहीं विवाह करूंगी इनसे, तुम मुझसे विवाह करो। भीषम बोले मैं तो नहीं करूंगा विवाह। वो चली गई भीषम के गुरु के पास और लेके परशुराम को खड़ा कर दिया। परशुराम बोला तुम मेरे शिष्य भीषम, इसके साथ विवाह करो, मेरी हर और फाइट विथ मी। और भीषम पिता मैंने अपने गुरु से युद्ध किया उनकी इच्छा से, लेकिन कोई परिणाम युद्ध का नहीं निकला। परशुराम का एनीवे आई ब्लेस यू। तो भीषम ऐसा वचन का निर्वाह किया उन्होंने अपनी प्रॉमिस का कि गुरु और माता के कहने के ऊपर भी जो एक बार वचन कह लिया था कर दिया तो कर दिया था। तो रेयर आदमी ऐसे होते, भक्ति सिद्धांत सरस्वती के लिए 5 साल में आम नहीं खाने का वचन आजीवन निभाया। तो रेयर पुरुष ऐसे, देयर आर वेरी रेयर पीपुल लाइक दिस। वो भीषम आज सरसैया के ऊपर सोया हुआ है और उनको इच्छा मृत्यु। तब उसके पिता को जब ये पता चला कि भीषम मेरे लिए मछियारे की बेटी के विवाह के लिए अपने आप को आजीवन ब्रह्मचारी का संकल्प किया, तो पिता के हृदय में बहुत बड़ा पुत्र के लिए स्नेह उत्पन्न हुआ। बोला आज से गंगा पुत्र मैं आपको वरदान देता हूं, आपकी इच्छा नहीं होगी तो आपको कोई नहीं मारेगा, आपको इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं। इसलिए भीषम को कोई मार नहीं सकता है, मार सक नहीं सकता था कोई भी। आज वो इच्छा मृत्यु के वरदान वाला भीषम मरने की तैयारी कर रहा है। और कितनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उस वक्त एडवांस थी, आप तो आजकल बहुत आपको प्राउड, आपको प्राइड है, आप बहुत प्राउड है कि हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक मिनट के अंदर हम फोन पे बात करेंगे, ईमेल में सब देख लेंगे दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन भीषम के, भीषम ने किसी को चिट्ठी नहीं लिखी, फोन नहीं किया, भीषम ने संकल्प किया मैं जा रहा हूं और ये मैसेज तपलोक जनलोक से लेकर और पाताल लोक तक पहुंच गया। और वहां से सब ऋषि आने लगे, बुलाया नहीं था किसी को, अंगिरा आया, गौतम आया, अत्रि आया, कनाद आया, परशुराम आया, ये ऋषियों का नाम लिखा है, 25-30 ऋषियों का नाम लिखा है। ये कोई जनलोक के से, कोई तपलोक से, कोई मैरलोक से, वहां से आके कुरुक्षेत्र में आ गए। कितना मैसेज आसानी से पहुंचा करता था पहले, हा? कोई बिल भी नहीं आया था, रिफिल भी कराने की जरूरत नहीं थी, हा? कितना परफेक्ट सिस्टम रहा होगा। और ये सब ऋषि वहां जब आए तो भीषम पिता मैं तो हाथों में भी बाण थे, सबको आंखों से यथावत सबका स्वागत किया, सब आके बैठ गए। और तब पांडवों को आते देखा और पांडवों में भी युधिष्ठिर आगे था, उसके सर के ऊपर हस्तिनापुर का मुकुट देखा, ताज देखा, क्राउन। भीषम ने कहा अब मैं सुख से मर सकता हूं, मैंने मेरे पिता को वचन दिया था कि जब तक हस्तिनापुर सुरक्षित हाथों में नहीं होगी तब तक मैं प्राण नहीं त्यागूंगा, आज हस्तिनापुर धर्मराज के हाथ में है, अब मैं मर सकता हूं। भीषम को देखा कि धर्मराज के सर के ऊपर हस्तिनापुर का मुकुट है, तो आपने कहा अब मेरे को जाने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उसको देखते ही कहा कृष्ण कहां है। जहां अर्जुन दिखता है तो एकदम आदमी कृष्ण को ढूंढता है कि अर्जुन कहीं होगा तो कृष्ण होगा। ये बहुत इसी को बोलते हैं कि कुछ ऐसे मित्र होते हैं, जोड़ा होते हैं, एक का नाम आएगा तो दूसरे का नाम अपने आप आ जाएगा। कोई राम कहेगा तो लक्ष्मण अपने आप मुख पे आ जाता है, मालूम है। कृष्ण अर्जुन अपने आप आ जाएगा, सुधामा कृष्ण अपने आप आ जाएगा। एक का लोगा दूसरे का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको मालूम है ऋषिकेश में एक झूला है लक्ष्मण झूला, वो तो पहले बना था। दूसरा जब झूला बना उसका नाम था शिवानंद झूला। वो महाराज शिवानंद के 16 साल के लिए झूला बनाया, शिवानंद झूला लिखा। कोई नहीं बोलता शिवानंद, सब बोलते राम झूला। अब लक्ष्मण के बाद राम ही आएगा, शिवानंद कहां से बीच में आ गया। इसको बोलते हैं अटूट कोई नाम होते हैं, वो एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकता है। अर्जुन दिखा तो कृष्ण कहां है, तब कृष्ण का दर्शन हुआ। और तब भीष्म कहता है अंत समय मरने वाले योगी जिसका ध्यान करते हैं वो साक्षात आज मेरे सामने खड़ा है। और फिर कितने विश्वास के साथ कहते हैं जब तक मैं प्राण नहीं त्यागूंगा तब तक ये प्रतीक्षा करेंगे, ही विल बी वेटिंग हियर। अरे भाई वेटिंग तो बहुत दुखदाई होता है, किसी के लिए वेट करना बड़ी चिंता होती है, तो क्या परेशान होगा? बोलो नहीं नहीं, प्रसन्न स्माइलिंगली ही विल वेट विथ स्माइलिंग फेस। भीष्म कहता है कि स्माइलिंग फेस के साथ मुस्कुराते हुए ये मेरे लिए प्रतीक्षा करेंगे जब तक मैं अपने शरीर को नहीं छोड़ूंगा। कलेवरम, मैं शरीर को विनोहम, इसको नहीं जब तक छोड़ूंगा तब तक ये प्रतीक्षा करेंगे और मुस्कुराते रहेंगे। जो मरते समय ध्यान करते हुए योगियों को दिखता है वो साक्षात मेरे सामने खड़ा है। और फिर भीष्म पितामह कहते हैं पांडव युधिष्ठिर, मैं नहीं समझता हूं कि तुम धर्मराज हो, कभी तो कोई तुम्हारा शत्रु पैदा ही नहीं हुआ है, अजात शत्रु हो, और कृष्ण आपका मित्र है साक्षात भगवान, फिर भी आपने इतने कष्ट सहे, 12 साल वनवास, द्रौपदी का अपमान आंखों से आपने देखा है, घोर युद्ध किया, इसका कारण क्या हो सकता है? और फिर भीष्म ही कहता है सवाय काल के और कोई इसका कारण नहीं है। समय बहुत बलवान होता है, समय कभी को ऊपर बिठाता है, कभी किसी को नीचे बिठाता है। समय बहुत बलवान होता है, कभी दिन होती है, कभी रात होता है, कभी बादल होती है, कभी बरसात होती है। समय का अपना नेम है, कभी द्रौपदी 5 पांडवों की पटरानी होती है और कभी वो विराट राज में श्रृंगार करने वाली सेंद्री बन जाती है। ये समय का कमाल है। और उसके बाद भीष्म पितामह ने राज धर्म का, वर्णाश्रम धर्म का, नारी धर्म का उपदेश दिया, युधिष्ठिर महाराज को राज करने के लिए प्रेरित किया। और उसके बाद जब ठीक समय आया तो 11 श्लोकों में भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की है। 11 verses हैं, 32 से लेकर 42 तक। बड़ी अद्भुत प्रार्थना है भीष्म पितामह की भगवान श्री कृष्ण की प्रति। खुली आंखों से कहते हैं मेरी बुद्धि। भीष्म पितामह कभी कभी कहने वाले इस तरीके से कहते हैं सिर्फ रोमांचक बनाने के लिए। भीष्म पितामह कहता है कि भगवान मेरी पुत्री, मेरी पुत्री को मैं आज आपको विवाह के दे रहा हूं, आप अपने चरणों में स्वीकार कीजिए। अरे ब्रह्मचारी की पुत्री कहां से आ गई? बोला बुद्धि रूपी मेरी पुत्री जिसको आज तक मैंने संसार में कहीं लिप्त होने नहीं दिया है, आज मैं उसको आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूं। मेरे मन और बुद्धि को मैं आपके चरणों में अर्पण करने जा रहा हूं। भगवत गीता में भगवान क्या मांगता है देखा है कभी? सारी भगवत गीता का सार क्या है? मैं अर्पित मनोबुद्धिर, तुम्हारा मन और बुद्धि मुझे दे दो। और यहां वो एक अद्भुत भक्त है भीष्म जो अपनी मन और बुद्धि ऐसे थाली में रख के भगवान के आके अर्पण करके ले लो। ये बहुत बड़ा विचित्र एग्जाम्पल है। कहते हैं मेरी बुद्धि आपके चरणों में लगे। और फिर प्रार्थना के जो शब्द है बड़े अद्भुत हैं कि भगवान श्री कृष्ण आपने मेरे वचन की रक्षा करने के लिए अपना वचन तोड़ दिया, मेरे वचन की रक्षा करने के लिए अपना वचन तोड़ दिया। कौन सा वचन भीष्म पितामह ने किया था जिसकी रक्षा भगवान ने करी, और भगवान ने कौन सा वचन तोड़ा? भगवान ने शस्त्र उठाया, ये अपना वचन तोड़ा। भीष्म का कौन सा वचन था जो भगवान ने तोड़ा था? एक बार दुर्योधन ने कहा, भीष्म पिता मैं, आप हमारे कमांडर इन चीफ हो, सेनापति हो, हमारी सेना को तो पांडव गाजर मूली की तरह रोज काट रहे हैं, आप आज तक एक भी पांडव नहीं मरा है। भीष्म क्षत्रिय है और क्षत्रिय को कोई ऐसे कहता है तो पांच बाण ऐसे निकाले, बोला ये पांच बाण है कल पांडवों के लिए। अब दुर्योधन चालाक है ना, बोलता है बाबा को कल मन बदल जाएगा, बोला ये पांच बाण मेरे को दे दो। दुर्योधन बोलता है कल सुबह आपको दूंगा मैं दादा, मैं इसको सुरक्षित रखता हूं। और अर्जुन वहां थका हुआ है, सारा दिन युद्ध करके सो गया, कृष्ण ने जाके उठाया, भारत उठो, बोला नींद आ रही है थक गया हूं। बोला तुम्हें चिंता नहीं है, बोला तुम चिंता करो। जो चिंता खुद करता है भगवान उसके लिए परेशान नहीं है, जो चिंतन करता है उसकी चिंता भगवान करता है। आप चिंतन करो भगवान चिंता करेंगे, आज भगवान चिंता कर रहे हैं। पार्थ उठो, बात क्या है, सुबह लड़ना है, थक गया हूं। बोला दुर्योधन ने तुम्हारे को एक वचन दिया था याद है? बोला कौन दुर्योधन को याद करता है, उसको तो मारना है, उसकी भी याद करने की कोई ये टाइम है? बोले तो जागो, मैं आपको खास बात बताने जा रहा हूं। दुर्योधन ने आपको एक वचन दिया था, कब कौन सा? बोला काम्य वन में जब आप रह रहे थे, और काम्य वन में दुर्योधन कर्ण को लेकर, दुशासन को लेकर, शकुनी को लेकर बहुत बड़ा उधर पार्टी और फीस्ट किया था, जहां आप रह रहे थे उसके सामने फ्राई पान के अंदर बड़े बड़े चीजें फ्राई की थी, सिर्फ इसलिए कि उसका बहुत जो फ्लेवर जाएगा भीम के नासिका में, उसके पेट में बल पड़ेंगे ना भूख के, वो दुख देने के लिए किया था केवल। कभी मैंने आपको बताया, कभी आप बांके बिहारी मंदिर जाके आगे से गुजरेंगे ना दर्शन के लिए वृंदावन में, तो बाहर जो भला बनाने वाले हैं ना पूरी वाले, वो आपको देखकर थोड़ा घी को अंदर डाले छूं करेंगे, खुशबू ऐसी आएगी बांके बिहारी भूल जाएगा, आप बोलेंगे भला पूरी दो, भगवान भूल जाता है उधर, बहुत से लोगों को भूल जाते हैं, हमने देखा है खड़े होके खाते हैं फिर अंदर जाते हैं। ये उनका टेक्निक है कि वो खुशबू ऐसी होती है कि सब कुछ भूल जाता है। क्यों भाई दादू ठीक है कि नहीं? अब अर्जुन को याद आया, बोला हां, जब ऐसे कर रहे थे कौरव तो चित्ररथ गंधर्व ने दुर्योधन को बंदी बना लिया, कर्ण बचा नहीं पाया, और यह समाचार युधिष्ठिर महाराज को मिला। युधिष्ठिर महाराज ने जो शिक्षा दी वो हमारे लिए बहुत अच्छी है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, दुनिया के लिए, फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड, 100 कौरव और 5 पांडव 105 हैं, वी आर टुगेदर। अपने घर में हम 5 पांडव 100 कौरव, घर का झगड़ा घर में रखना है, पर फॉर पब्लिक वी आर 105। बहुत बड़ी शिक्षा हमारे लिए है कि एज ए भक्त हम सब एक हैं। ये सेंटर वो सेंटर, ये मंदिर वो मंदिर, ये वो, बाहर दुनिया के लिए डिवीजन हो तो हो, लेकिन दुनिया में सब हम एक हैं। अंदर में हो सकता है कि हम हमारे में डिफरेंस हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वी आर वन। ये महाराज युधिष्ठिर की बहुत बड़ी शिक्षा है जो ग्रहण करनी चाहिए जीवन में हर एक आदमी को, अपने परिवार में। जाओ अर्जुन, दुर्योधन का को रिलीज कराओ चित्र रथ गंधर्व से। भीम बोला मारने दो उसको, कब से पेट में बल पड़ रहे हैं, यही उसको आगे करना था पार्टी, और कोई जगह नहीं मिली उसको। युधिष्ठिर महाराज कहते नहीं नहीं जाइए आप। अर्जुन गया, चित्ररथ अर्जुन का मित्र था, अर्जुन को देखा, बोला ये हमारे भाई, इसको छोड़ दो, दुर्योधन को छोड़ दिया। तब दुर्योधन ने कहा, पार्थ आपने मेरा रक्षा की है, मैं आपको वरदान देता हूं, मांगो कुछ क्या चाहिए। अर्जुन ने कहा मुझे कुछ लेने के लिए नहीं आया हूं। वो युधिष्ठिर ने कहा इसलिए आपको छोड़ा दिया है, आप अपने घर जाइए, आज कृष्ण कहता है वो जाके उससे जो आपको वरदान दिया था मांग लो, जाओ वो वरदान मांग लो। बोला क्या मांगना है? बोलो भीष्म ने 5 बाण रखे हैं काल 5 पांडवों को मारने के लिए, जाए मांगो, जाके मांगो। अर्जुन रात को दुर्योधन के शिविर में गया, दुर्योधन का छोटे भाई आप कहां से आ गए अर्जुन, क्या बात, क्या चाहिए? राज चाहिए, हस्तिनापुर चाहिए, बोलो क्या। बोले चाहिए कुछ नहीं, एक आपने वरदान दिया था वो मांगना आया हूं, मुझे याद है वरदान, वही ना चित्रवत से आपने मुझे रक्षा की थी, मांगो क्या चाहिए, हस्तना दे दो, हस्तनापुर ले लो, युद्ध खत्म करें। बोले वो तो लड़के ले लेंगे, अभी मेरे को 5 बाण दे दो जो भीष्म पितामह के आपने रखे है। और दुर्योधन ने उदारता के साथ अपने वचन के निर्वाह के लिए वो बाण दे दिए। सुबह भीष्म पितामह कहते वत्स दुर्योधन मेरे बाण लाओ, दुर्योधन कहता वो तो रात अर्जुन ले गया। हाँ अर्जुन ले गया, हाउ कैन अर्जुन टेक, ये कृष्ण का काम है, ये कृष्ण का काम है। और तब भीष्म ने कहा मेरे वचन को जिसने तुड़वाया है वो अपना कल वचन तोड़ेगा, नहीं तो मैं अर्जुन की ऐसी स्थिति करूंगा कि उसको बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो ये वचन, मेरा वचन जिसने तोड़वाया है उसको मैं वचन तोड़वाऊंगा। तो यहां भीष्म कहता है मेरे वचन की रक्षा की, अपना वचन तोड़ दिया। इसलिए जहां भगवत गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन को प्रतिजानी कौन थे नव भक्त प्रणश्यति, जाओ अर्जुन शहर के अंदर बड़ी बिल्डिंग के ऊपर, तब भी कोई बड़ी बिल्डिंग हुआ करती होगी कि सबसे ज्यादा जो 111 माले की उसके ऊपर खड़ा होना और फिर डंडोरा पीट के सबको बोलना सुनो सुनो सुनो, जो एक बार कृष्ण का भक्त हो जाता है वो कभी उसका नाश नहीं होता है, और जाके तुम लोगों के सामने तुम प्रतिज्ञा करो यू वो। अर्जुन कहता आप जाके प्रतिज्ञा करो, मैं क्यों करूं। तब भगवान कहते ये गीता सुनने के बाद युद्ध होगा तब मैं मेरी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा, मैं अपनी प्रतिज्ञा भक्तों के लिए तोड़ता हूं लेकिन भक्तों के किए हुए वचन को कभी मैं टूटने नहीं देता हूं, इसलिए तुम्हारे वचन की रक्षा करूंगा, ये मेरा व्रत है। तो ये बहुत बड़ा अद्भुत। अब भीष्म पितामह कहते हैं अब दूसरा दृश्य देखते हैं, आप अर्जुन लड़ने से इनकार करके हथियार नीचे रख दिया और आपने उसको भगवत गीता का उपदेश दिलाकर और युद्ध के लिए तैयार किया, मैंने वो सामने देखा था, वो मुझे आपका जो आप खड़े थे वो अच्छा लगा, उससे मुझे अच्छा ये लगा था जब युद्ध भूमि में घोड़ों के टापों से उड़ी हुई धूल, आपके गुंगरालू बाल और परिश्रम के कारण पसीना उसके ऊपर लगी हुई धूल और मेरे बाणों से आपका कवच टूटा हुआ और खून बहता हुआ, और इस स्थिति में आपने पहिया उठाया रथ का और जैसे शेर हाथी के ऊपर दौड़ता है ऐसे मेरी तरफ आए थे, वो रूप मेरे हृदय में आज भी मैं देखता हूं और मैं उसके ऊपर ध्यान करना चाहता हूं। बड़ा सुंदर ये सीन, इसको देखना चाहिए कि वो ये वीर रूप है भगवान श्री कृष्ण का, भीष्म वीर है तो भी वीर रूप कृष्ण का दर्शन उसको याद आ रहा है। और फिर कहता है मैं तो आपने विजय सखा अर्जुन का नाम है, आपने अर्जुन के रथ को अपना कुटुंब मान लिया था। कुटुंब किसको कहते हैं, अपने परिवार को, जिसके लिए सब उल्टा सीधा काम करना पड़ता है, कुटुंब के भरण पोषण के लिए सब उल्टा सीधा काम करना पड़ता है, आपने अर्जुन के रथ को अपना कुटुंब मान लिया था। वो सांप बिठाया किसी एरो में और करण ने चलाया तो आप रथ को ही नीचे धक्का के बिठा दिया, घोड़े को मुकुट के ऊपर से चला गया, अर्जुन को बचा दिया, कैसे आपने करण को मरवा दिया, ये सब आपने अपने कुटुंब का भरण पोषण सबको करना पड़ता है, कैसी भी स्थिति करना ही है, आपने अर्जुन के रथ को अपना कुटुंब मान लिया था और आपने बैठकर अर्जुन के रथ के आगे सारथी के रूप में सामने वाली सेना की आयु छीन ली, सामने वाली सेना को आपने केवल दृष्टि देखने से मार दिया। और वैसे भी जिस दिन उन्होंने पांचाली के खुले हुए बाल देखे थे उस दिन उनकी आयु समाप्त हो गई थी। ये भागवत में बहुत बड़ा संकेत है कि स्त्री के बालों का अपमान करने वाले की आयु क्षीण हो जाती है, खुले हुए बाल पांचाली की। और फिर भीष्म पितामह अद्भुत प्रार्थना करते हुए उनको ब्रज याद आती है, जैसे घोड़ों की टापों से धूल थी ऐसे ब्रजवासी क्या देखना चाहती थी गोपियां, शाम को आते हुए गोधूलि के समय गोधूली किसको कहते हैं, शाम का समय जब गाय आती है तो धूली उड़ती है, उसका नाम भी इवनिंग का, जिसको हम डस्क कहते हैं उसको गोधूली कहते हैं। गोधूली के समय सारी गोपियां और बड़ी बड़ी गोपियां और नौजवान गोपियां प्रतीक्षा करती थी, अब कृष्ण वृंदावन में प्रवेश करेगा तब भी उसके घुंघरालू बालों के ऊपर मिट्टी होगी, परिश्रम हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा हुआ, उसको देखने के लिए वो खड़ी होती थी। और फिर तो वो भीष्म पितामह ने कह दिया, वो गोपियां रास में आपके गुम जाने के, आप उनके अदृश्य हो गए, तब तो वो आपका अभिनय कर रही थी, गोपियां आपका अभिनय कर रही थी, अब मेरा मन आपके चरणों में लगे, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूं। और ऐसी प्रार्थना करते हुए खुली हुई बड़ी आंखों से श्री कृष्ण का स्वरूप पीते हुए भीष्म पितामह ने अपना सांस बंद कर दिया। शांति चारों ओर हो गई, आकाश से पुष्प वर्षा हुई, सब ऋषियों के बीच में ये सब हुआ, वो सब बैठे हुए थे। और भीष्म पितामह के इस मृत्यु को देखकर लोगों ने मन में ऐसे भाव कवियों ने बनाया, इतनी तो करना कृपा जब प्राण तन से निकले, गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी मट हो, सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, लोगों ने फिर ये गाया। ये भीष्म पिता के अलावा किसी के साथ कृष्ण खड़ा हो मरते हुए उदाहरण नहीं मिलता है, एक यूनिक एग्जाम्पल है डिपार्चर का इस दुनिया से। और परीक्षित के डिपार्चर के समय यही सारे ऋषि वहां आके बैठे हैं, इनका सेम ऋषि का नाम है वहां, लेकिन वहां कृष्ण की जगह भागवत कही जा रही है। अब सारे ऋषियों ने साइन कर दी कि जो कृष्ण के सामने भीष्म पिता को गति हुई वही परीक्षित की गति हो रही है, इट इज सर्टिफाइड, ऋषि सम्मत है भागवत, ऋषियों सब वही ऋषि बैठे हुए थे, सेम ऋषि वर देर एग्जैक्टली, देख लेना दोनों को, दोनों जगहों को। तो यहां भीष्म पितामह का प्राण होता है भगवान श्री कृष्ण के सामने, सब देख रहे हैं उन, तो ये अद्भुत कथा भीष्म पितामह के। और कभी हम कथा कर में बात याद आती है तो फिर प्रभुपाद जी का जब इस संसार से जाने का समय था तभी भागवत उनके सामने भक्त बैठ के भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे, और उस भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं है, उनकी उपस्थिति में वृंदावन धाम में प्रभुपाद जी वापस गोलोक गए थे। तो ये भक्तों को उदाहरण रखना चाहिए हृदय में, एस्पायर होना चाहिए कि हाउ कैन वी डिपार्ट लाइक दिस, हमारी एस्पिरेशन होती है कि हमारा विला कब लेंगे, गाड़ी कब लेंगे, कोई एस्पायर ऐसे करना चाहिए कि अंत समय भगवान याद आए, चार भक्त मेरे चारों ओर बैठ के कीर्तन करें, कोई भागवत सुनाए, ये आर्ट ऑफ डाइंग है, ये बहुत बड़ा आर्ट है, बहुत रेयर आदमी को ये आता है, जिए तो राजा की तरह मरे कुत्ते की तरह, तो फायदा क्या राजा की तरह जिए और कुत्ते की तरह मरे तो बड़े बेनिफिट। ये भीष्म पितामह के प्राण के बाद परीक्षित की महानता ये दिखानी जा रही है। भगवान श्री कृष्ण अब हस्तिनापुर से जा रहे हैं द्वारका, कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका के लिए जा रहे हैं, एक बार जा रहे थे तब तो कुंती महारानी ने प्रार्थना की और युधिष्ठिर ने रोका और रुक गए, अब दोबारा जा रहे हैं, उसका दर्शन है। और फिर रिसेप्शन जो भगवान श्री कृष्ण की द्वारका में होती है उसका एक पूरा अध्याय, तो ये दो अध्याय में भगवान श्री कृष्ण सिर्फ ये दिखाना है कि जितना द्वारका वासियों से भगवान प्रेम करते थे उतना ही प्रेम करते थे पांडवों के साथ, और शायद पांडवों के साथ ज्यादा प्रेम करते थे, इसलिए द्वारका वासी ये कहते हैं कि आप आए दिन चले जाते हो हस्तिनापुर, हमको आपकी जुदाई सताती है, व्हेन यू आर फ्रीक्वेंटली यू आर गोइंग टू विजिट योर फ्रेंड्स पांडवस एंड वी फील ए सेपरेशन, ये द्वारकावासी कहते हैं। तो ये दिखाना है कि परीक्षित के कुल वालों के ऊपर भगवान को अपने परिवार से ज्यादा स्नेह और प्रेम था। और फिर धृतराष्ट्र का गति सदगति की बात कर रहे हैं, यह भी बड़ा अद्भुत देखने जैसा चरित्र है। भगवान श्री कृष्ण जब दूत बन के गए थे शांति के, कि युद्ध मत करो, पांच गांव ही दे दो, श्री कृष्ण के जाने के बाद विदुर को बुलाया धृतराष्ट्र ने, कहा विदुर क्या करना चाहिए। विदुर ने कहा महाराज दुर्योधन कुल घाती है, इस वक्त कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है और कृष्ण की बात न मानना सारे कुल का नाश हो जाएगा। और विदुर ने नीति बताई, विदुर नीति उस वक्त कहा सुनिए महाराज, उंगली खराब हो और उसके कारण सारे शरीर को हानि हो तो उंगली को काट देनी चाहिए। एक आदमी परिवार में खराब हो जिससे पूरे परिवार का सम्मान खराब होता हो तो आदमी को निकाल देना चाहिए। एक गांव में एक घर बदमाश का हो तो निकाल देना चाहिए और एक देश में एक गांव बेकार हो तो हटा देना चाहिए। तो आप इस दुर्योधन का परित्याग कर लो, ये मशवरा दे रहा था विदुर, एडवाइस। उसी वक्त अंदर दुर्योधन प्रवेश किया, कर्ण भी आया, ये चंडालों की चौकड़ी थी, चार हैं पूरे, दुर्योधन दुशासन कर्ण शकुनी। ये शकुनी कहां से आया था मालूम है? अफगानिस्तान से आया था। भारत में आतंकवाद अफगानिस्तान से महाभारत के समय से आ रहा है। नाम उसका गंधार ही है, वो कंधार की थी और भीष्म पितामह उसको मांगने गए, लेकिन थे धृतराष्ट्र के लिए मांगने गए। गंधार ने सुना मेरा पति की आंखें नहीं है, उसने तो पट्टी बांध दी, लेकिन शकुनी ने कहा जबरदस्ती लड़ तो नहीं सकते भीष्म से, हमारी बहन को ले जा रहा है, लेकिन मैं इसके साथ जेहज में जाऊंगा और उनके सारे कुल का सत्यानाश करूंगा, ये संकल्प करके गया था। हाँ एग्जैक्टली, ही वेंट विद दिस इंटेंशन, यही इंटेंशन उसका था। अब देखेंगे महाभारत में जो सबसे ज्यादा जिसका मेन रोल है वो शकुनी का है, मामा शकुनी। अब आते ही दुर्योधन कहता है काका हमारे रहते हमारे साथ खाते हमारे और गुण गाते हो पांडवों के, अभी निकल जाओ यहां से, मैं केवल आपका प्राण छोड़ता हूं नहीं तो मार देता। विदुर का निरादर किया और धृतराष्ट्र चुप रहा, और चुप रहना सहमति का सिम्टम है। विदुर बाहर निकला, धनुष बाण दरवाजे के ऊपर रखा, विदुर के पास भी धनुष बाण था। विदुर भी व्यास का पुत्र था, कोई साधारण व्यक्ति नहीं था और धर्मराज था। भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबसे समान हूं, भगवान सबसे समान है तो पांडवों को भी धर्मराज युधिष्ठिर दिया है और कौरवों को विदुर युधिष्ठिर दिया है धर्मराज, दोनों को धर्मराज दिया है कि नहीं दिया? देखो कौरवों के पास विदुर वही धर्मराज है और वही धर्मराज पांडवों के पास युधिष्ठिर के रूप में, अंतर क्या है? पांडव युधिष्ठिर की हर बात मानते हैं और धर्म के ऊपर है, इसलिए भगवान उनके संग में है, और दुर्योधन और उसके साथी उस धर्म को नहीं मानते हैं धर्मराज को, इसलिए भगवान उनके साथ नहीं है। ये बहुत बड़ा, इसको सीन को ऐसे देखेंगे तो भगवान ने तो दोनों को दिया ना, दोनों को फैसिलिटी दी, धर्मराज की दी, एडवाइस दिया, रिलीजन धर्म दिया, एक मानता है एक नहीं मानता है, जो मानता है उसके साथ भगवान है, जो नहीं मानता है उसके साथ भगवान नहीं है। और विदुर ने बाहर धनुष्मान बाहर रख क्यों दिया? उसका अर्थ यह था कि मैं अब पार्टी बदलूंगा नहीं, कि आपको छोड़ के पांडवों की तरफ नहीं जाऊंगा, बस अब ये धनुष्मान यहां छोड़ने का मतलब अब मैं सब कुछ यहां से छोड़ के जा रहा हूं, मेरा अपमान मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है कि अब भगवान की भक्ति करने तीर्थ यात्रा को जाऊंगा, मेरी जान छूटी, बिफोर टाइम रिटायरमेंट हो गई। यहां तो लोग रिटायर होने के बाद रिटायर होते हैं, रिटायरिंग समझते हैं? टायर घिस जाता ना, फिर जो दोबारा रबड़ चढ़ाते हैं, रिटायरमेंट का रिटायरिंग, पहले तो 8 घंटे काम था, 12 घंटे काम करते। विदुर ने कहा अच्छा हुआ बनी, रिटायरमेंट हो गई फर्स्ट क्लास। अब इस विदुर का दर्शन कीजिए, आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। जिस घर से अपमानित होकर निकला था, डिसग्रेस्ड होकर जहां से निकाला गया था, आज विदुर ने जन्म सार्थक किया मैत्रेय के चरण में बैठकर हरिद्वार में जन्म सार्थक किया। पर उपकार करना है आज, किसका करूं? बोला जिसने घर से निकाला था उसी का पर उपकार करना चाहिए। कितनी बड़ी बात है, कभी सोच के देखो कि जिस घर से अपमानित होकर निकला था, डिसग्रेस होकर जहां से निकाला गया, उसी धृतराष्ट्र के उद्धार के लिए विदुर वापस आया। इसलिए कहते हैं साधु को, संत को, वैष्णव को किसी से द्वेष नहीं होता। अपमान करने वाले का भी सम्मान करता है, उसके भी उद्धार के लिए सोचता है, ये साधु की मानता है। कहते हैं राम जब वापस वनवास के से आए थे तो कैकेयी के चरणों को पहले छुआ था, जिसने वनवास दिया था उसी का पहले आके चरण छुए थे, और यहां विदुर वापस उसी को लेने के लिए आए हैं जिसने अपमानित करके निकाल दिया था। आज विदुर आए, पांडव इतने खुश हो गए। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं हमारे तो पिता से पिता तुल्य आप रहे हैं, हमारे तो पिता देखे नहीं हमने, लेकिन आप हमारे पिता तो देखा ही नहीं था, पांडु को देखा नहीं था पांडु ने, आप ही हमारे तात रहे, आपने हमारी रक्षा कहां कहां नहीं की है, आप कहां हमको छोड़ के चले गए थे। विदुर ने बहुत अच्छा घूम फिर के मैं आ गया, ठीक है। रात को जाके धृतराष्ट्र को ऐसे चूंटी मारे, बोले कहां पड़े हुए हो, अभी तक तुम्हारा भोग से मन नहीं भरा है, कुत्ते की तरह दरवाजे के ऊपर भीम के टुकड़े खा रहे हो जिसने तुम्हारे 100 पुत्र मारे हैं। यहां लिखा है कि संत मनोरंजन के लिए नहीं होता, संत जगाने के लिए होता है। साधु का काम है जगाना सोए हुए को, और अज्ञानता में सोए हुए धृतराष्ट्र को जगाने के लिए बहुत कटु वचन बोले हैं धृतराष्ट्र को विदुर ने। सोए को जगाना कितना मुश्किल है, माताजी लोग बच्चों को जगाना कितना मुश्किल है सुबह स्कूल के लिए, देखा है नहीं जगते है ना, बहुत मुश्किल है सोए को जगाना, साधु का काम है। इसलिए प्रभुपाद जगाने के लिए रास्कल बोलते थे, रास्कल का जगाने का शब्द है, बदमाश हो तुम, हाँ मैं तो अच्छा आदमी हूं, MBA हूं, बड़ा बदमाश MBA तो बड़ा बदमाश है पहले छोटा। ये जगाने के लिए भाषा बोलने लगे विदुर। अब धृतराष्ट्र का मन बदल गया, बोला भैया मैं चलता हूं। विदुर ने धृतराष्ट्र का हाथ पकड़ा, धृतराष्ट्र के पांव के आवाज को गंधारी पहचाना, बोला मुझे कहां छोड़ के जा रहे हैं। गंधारी ने हाथ पकड़ा धृतराष्ट्र का और तीनों रात को निकले। सुबह उठ के महाराज युधिष्ठिर देखता है ताऊ जी कहां चले गए, हम उसकी सेवा नहीं कर पाए। संजय कहां गए तुम्हारे मास्टर, संजय बोलता मेरे को भी आज धोखा देके चले गए, मेरे को भी नहीं मिले, अब तो बहुत परेशान हो रहे हैं, कहां गए कहां गए कहां गए। नारद जी पधारे, नारद जी ने कहा चिंता मत करो, वो हरिद्वार की तरफ रवाना हो गए उत्तर दिशा में, 5 दिन के बाद धृतराष्ट्र प्राण त्याग देगा अपने योग अग्नि से, गंधारी उसमें प्रवेश करेगी और विदुर वहां से चले जाएंगे। और महाराज युधिष्ठिर समय आने के ऊपर सबको जाना पड़ेगा, अब भगवान श्री कृष्ण की जाने की तैयारी कर रहे हैं, संकेत दे के चला गया नारद जी। यहां धृतराष्ट्र के उद्धार के बाद परीक्षित के जन्म की कथा है, और परीक्षित का जन्म हुआ तो युधिष्ठिर महाराज ने बहुत बड़ा दान दिया, सोना चांदी गाय जमीन ब्राह्मणों को, और पूछा हमारा ये बेटा कैसा होगा, और जो वर्णन है उसके अंदर कि कैसा होगा ये परीक्षित, अर्जुन के समान धनुर्धर होगा, आपके समान धीर्यवान होगा, बलि के समान वचन निर्वाह करने वाला होगा, और शिबी की तरह दानी होगा जो अपना शरीर का टुकड़ा निकाल के किसी को दे दे, हिमालय की तरह आश्रय देने वाला होगा किसी को। तो ये बहुत बड़ी, और फिर कह दिया समय आने के ऊपर ब्राह्मण का सांप होगा और भागवत का अवतार होगा परीक्षित के लिए। तो यह हम आपको कह रहे थे परीक्षित का जब जन्म हुआ तो यह जन्म का उत्सव हुआ, तो इसका नाम क्या रखा गया, विष्णु रात, जिसकी विष्णु ने रक्षा की। लेकिन क्योंकि परीक्षित जन्म लेते ही जैसे थोड़ा बड़ा हुआ, हर एक को ऐसे देखता था, देखने के बाद ऐसे करता था, क्यों, परीक्षा लेता था, ही वॉज एग्जामिन एवरीबडी, ही वॉज ट्राइंग टू सी द पर्सन हु हैज प्रोटेक्टेड हिम इन द होम ऑफ हिज मदर। तो ऐसे है। फिर कृष्ण भगवान आए हुए थे, एक यज्ञ करा रहा था महाराज युधिष्ठिर, 3 अश्वमेध यज्ञ किए महाराज ने, तो एक यज्ञ में कृष्ण आए हुए थे, तीनों में थे, लेकिन जब आए एक बार तो परीक्षा थोड़ा छोटा चल सकता था। कृष्ण आके बैठे आसन के ऊपर, घर से परीक्षित को गोद में लेके आई मासी और महाराज के गोद में दे दिया। महाराज की गोद से परीक्षित उतरना और सबको देखते हुए कृष्ण जहां बैठा था वहां खड़ा हो गया, वहां देखा ऐसे नहीं किया, देख रहा है, बहुत देर देखा, तब व्यास देव बैठा था उठ के आए, श्री कृष्ण को बोला इसने आपको पहचान लिया है, लेकिन इसको एक शंका है अभी, इसलिए देयर इज वन डाउट, जब आपने रक्षा की थी तो आपके 4 हाथ थे चतुर्भुज रूप में थे ना। अब आपके दो हाथ और इसको दिखा दीजिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्भुज रूप दिखाया और उसके बाद परीक्षित ने किसी और को नहीं देखा, उसी कृष्ण को हृदय में विराजमान कर लिया। तो ये परीक्षित की मान्यता है कि परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण का जन्म से पहले भी दर्शन किया था और बाद में उसी को पहचान लिया। अब महाराज परीक्षित दिग्विजय के लिए जाते हैं। दिग किसको कहते हैं? दिशाओं को, डायरेक्शन को। और सब डायरेक्शन में जब महाराज परीक्षित गए हैं दिग्विजय के लिए, तो उस वक्त लोगों ने पांडवों की प्रशंसा की है कि आपके पितामह कितने महान थे अर्जुन, इससे हमको सीखना क्या चाहिए? अब अच्छे काम कुछ करके जाओ, आप जब नहीं रहो तो आपके बेटे पोते को कोई कहेगा तुम्हारा पिता अच्छा था। इसलिए अच्छा काम दुनिया में करके जाते हैं ना, उनका पीछे दुनिया को सुख मिलता है तो गुणगान करते हैं। आज परीक्षित का दिल फूलता है, जहां भी जाता है देखता है हमारे माँ लोग ड्रामा करके दिखाते हैं कि कैसे पांडव महान थे। तो अच्छा काम दुनिया में करके जाना चाहिए ताकि पूर्वज जो हमारे पीछे बच्चे आएंगे उनके लिए बहुत बड़ा स्वाभिमान होगा, दे विल बी प्राउड। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, छोटी शिक्षा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं। और तब परीक्षित दिग्विजय करके जब वापस लौटता है तो एक दिन परीक्षित जाता है शिकार करने के लिए, साथियों से अलग हो जाता है, प्यास के मारे सम्यक ऋषि के आश्रम में प्रवेश करता है। ऋषि को ध्यान में देखता है, महाराज को क्रोध आता है, बाहर निकल के मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डाल देता है। अब यहां देखना यह है कि परीक्षित जिसको भगवान ने जन्म से पहले दर्शन दिया, कलयुग के ऊपर जिसने विजय प्राप्त की, वो क्या परीक्षित को क्रोध आ सकता है क्या ऋषि के ऊपर? अथवा कहीं लोग ऐसे कहते हैं कि परीक्षित का सोने का मुकुट था, उसके अंदर कलयुग ने प्रवेश किया, वो कलयुग जो घुटने टेक के परीक्षित के सामने पड़ा था वो उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। हमारे आचार्य मानते हैं कि कलयुग ने कच्चे बच्चे ब्राह्मण के अंदर प्रवेश किया, सम्यक का बेटा जो श्रृंगी था उसके अंदर कलयुग ने प्रवेश किया, महाराज के मुकुट के सोने में नहीं प्रवेश किया। बच्चा तो ब्राह्मण का था, शक्ति बहुत थी लेकिन कच्चा था, कलयुग ने उसको अपना विक्टिम बनाया और उससे महाराज को शराब दिलाया। ये पहली बार अपर कास्ट ने लोअर कास्ट का अपमान किया। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर वर्ण आश्रम व्यवस्था बिगड़ने के लिए पहला उदाहरण ये लिखते हैं कि आज ब्राह्मण ने, और क्यों इसको ऐसे कहा जाता है, क्योंकि उसके पिता ने जब बच्चे को रोते हुए देखा ना तो कहा बेटा रो क्यों रहे हो? बोला मैं आपके गले में शराब है। तो साहब उठा के, इसमें कौन सी परेशानी? बोला मैंने शराब दे दिया। तो बाप ने कहा अच्छा नहीं किया, ऐसा राजा इस धरती के ऊपर फिर नहीं मिलेगा प्रजा को। तो बच्चे के काम को पिता ने सराहना ही, इसका मतलब ब्राह्मण जो उसका पिता था he did not like द एक्शन ऑफ हिज सन। जो पिता नहीं, पिता जिसको अपने बेटे के काम को नहीं सराहता है वो निश्चित रूप से गलत था। तो गलती किसने की? ब्राह्मण के बेटे ने की। महाराज के मुकुट में कलयुग ने प्रवेश किया, ये हमारे आचार्य नहीं मानते। तो यहां ये दर्शन है और कलयुग से जहां परीक्षित का मिलन हुआ है उसका दर्शन है। वो दर्शन है बेल एक टांग के ऊपर खड़ा है और गाय आंखों से आंसू बहा रही है, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। और उनको एक आदमी वेश तो राजा का पहना हुआ है लेकिन डंडा हाथ में लेके मार रहा है और दोनों धरथर कांप रहे हैं। उनको देखकर परीक्षित को बड़ा क्रोध आया कि मेरे राजधानी के अंदर गौ की हत्या कैसे करते हो, क्या समझते हो भगवान श्री कृष्ण अब धरती के ऊपर नहीं रहे इसलिए आप ऐसे कर रहे हो? तो इस स्थिति में पहचान लिया धर्म को, क्यों पहचान लिया वो भी बड़ा सुंदर वाता है कि धर्म को कहते हो कौन मार रहा है? बोला हमारे कर्म हमको मरवा रहे हैं, कोई आदमी नहीं मार रहा, वो सामने मार रहा है उसके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा है। बोला तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते हो, सामने मारने वाला है उसके ऊपर उंगली नहीं उठा रहे, तुम तो धर्म कोई देवता हो। आज कलयुग जब शरण में आया तो परीक्षित कहता है कि मेरे को जीवन दान दे दो, ठीक है तुम्हारे को मारते नहीं है लेकिन तुम जाओ। कहां जाऊं? बोला चार जगह देता हूं रहने को। कलयुग को कौन सी चार जगह रहने के लिए दिया? कलयुग ने को दिया परीक्षित ने सोना पान, जहां शराब पिया जाता है, जहां पशु हत्या होती है, एनिमल स्लॉटर होता है, और जहां जुआ होती है और जहां व्यभिचार होता है। ये चार चीजें कलयुग को मिली नहीं, घूम कर देखा चारों ओर, बोला है नहीं महाराज और कोई चीज चाहिए। और अभी ये चार चीजें हर सरकार ने ऑफिशियली अलाउड कर दी है, तो कलयुग ने तो सरकार के सर के ऊपर अपना डंडा रख दिया है। परमट शाप मिलेगा शराब का, परमट शाप, उसका नाम है परमट शाप। मरे हुए आदमी के ऊपर डॉक्टर लिखेगा खा सकते हो, ठप्पा लगाएगा खाने के योग्य है। कैसीनो ऑफिशियल खुला हुआ है, टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा। और पर स्त्री पर पुरुष संघ के लिए भी ऑफिशियल खुले हुए। अरे पर स्त्री पर पुरुष के संघ के लिए, अभी तो गवर्नमेंट पुरुष पुरुष के संघ के लिए भी ऐसा तो पशु भी नहीं करते है, इसे और कितना कल जो कमाल करके दिखाएगा। ये भी तो कोर्ट ने किसी ने पास कर दिया है ना। तो कलयुग अपनी चरम सीमाओं के ऊपर है। नारद जी से भक्ति ने एक बार पूछ लिया था कि जब कलयुग को परीक्षण ने पकड़ के मार ही दिया होता तो अच्छा था ना, छोड़ा क्यों जो सबको परेशान कर रहा है। तो उसका उत्तर ये दिया गया, अच्छे आदमी को सब में अच्छाई दिखाई देती है। कलयुग ने, कलयुग के अंदर परीक्षण को अच्छाई दिखाई दी। क्या अच्छाई दिखाई दी? दो अच्छाइयां दिखाई दी। एक अच्छाई ये दिखाई दी कि सत्ययुग में आदमी बुरा सोचता था तो भी दंड मिलता था, अच्छा करता था तब फल मिलता था। कलयुग के अंदर जब तक बुरा करेंगे नहीं, कितना भी बुरा सोचें दंड नहीं मिलेगा, अच्छा करो मत सोचो तो भी फल मिलेगा। इसलिए जब ये बात हम कहते हैं तब कहते हैं भैया सुबह उठकर आप कहना आज मैं 100 गाय दान कर रहा हूं, 1,00,000 रुपया मैंने ब्राह्मणों को दे दिया, कम से कम आपके खर्च नहीं लगता है, फल मिलेगा इतना तो करो। लेकिन नहीं होगा देखना। इट्स वेरी इजी, सुबह उठ के हाथ जोड़ के कहो मैंने आज 1,000 ब्राह्मणों का भोजन करा रहा हूं, खाइए खाइए, खीर पूरी खाइए, हाँ हलवा पूरी खाइए, नाम जितने आते सब ले लो, फिर भी आपका अकाउंट में जमा होगा। अगर ऐसे भी करना शुरू किया ना तो अगर आदत पड़ेगी तो फिर कभी हाथ से देना भी आ जाएगा। लेकिन ऐसे भी कोई नहीं कर पाता है, आप प्रयास करके देखो, हम कहे कह के थके हमसे भी नहीं होता है। कल से कम सब दान कर देना, थोड़ा कुछ दिल से दान करना। मैं बहुत बड़ा मंदिर बना रहा हूं, 25,00,000 रुपये का मेरा मंदिर है, सब लोग दर्शन करने आना, भगवान श्री राधा कृष्ण का मंदिर बना दे। तो भगवान लेके इसने एक मंदिर बनाया था, कम से कम सोचा तो था अच्छा। तो ये एक विशेषता कलयुग की। और दूसरी विशेषता क्या है कि कलयुग में ध्यान यज्ञ पूजा से जो फल मिलता था वो केवल भगवान के नाम जपने से मिल जाएगा। और कलयुग के लोगों को बहुत आसानी से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये भी कृष्ण शब्द का ही उच्चारण करने के लिए, देखिए व्यास सुखदेव के मुख से ये शब्द निकला है। जब परीक्षित पूछता है कि कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे हो, 12वें स्कंद के अंदर परीक्षित महाराज को कहा, कलयुग का दर्शन कराया, कलयुग इतना भयानक है, ऐसा ऐसा कलयुग में हाल होगा, तब परीक्षित कहते फिर लोगों का उद्धार कैसे होगा। तब सुखदेव गोस्वामी कहते कलयुग तो दोषों का सागर है, कलेर दोषे निधि राजन निधि सागर है। परीक्षित महाराज का चेहरा बहुत मुरझा गया, 7वां दिन था, बोला अभी तो मेरे प्राण निकलेंगे लेकिन मेरे प्रजा कलयुग के द्वारा सागर को कैसे पार करेगी। कलयुग परीक्षित के चेहरे को थोड़ा सा उतरा हुआ देखकर सुखदेव महाराज ने कहा अस्ति एको महागुण, एक बड़ा महागुण है कलयुग में। अब तो महाराज परीक्षित कहते जल्दी बताओ, मैं राजा हूं इसका पालन करूंगा तो प्रजा पालन करेगी, मैं राजा हूं मैं अगर इसका पालन करूंगा तो मेरी प्रजा पालन करेगी, सबका उद्धार हो जाएगा, तो मैं जाने से पहले अपने प्रजा का उद्धार करना चाहता हूं। तब सुखदेव गोस्वामी बोलने लगे अस्ति एको महागुण, तब शुद्ध सरस्वती सुखदेव के जीभा के ऊपर आके बैठी, क्या करना चाहिए? कीर्तन कीर्तन करना चाहिए, किसका? कृष्ण से, कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए। बहुत स्पष्ट शब्दों में जब बोला है सुखदेव, कीर्तन कृष्ण से, कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए। और भगवत कृष्ण भी बोल सकता था ना, सुखदेव हरि कीर्तन भी कह सकता था। कृष्ण शब्द एग्जैक्टली कृष्ण शब्द उनके मुख से निकला है, कीर्तन कृष्ण से, मुक्त संग, दुनिया के बंधन से मुक्त कर देगा। केवल मुक्त करने से काम नहीं चलता है। जेल से एक आदमी आए निकले बाहर दरवाजे के ऊपर, और बाहर रिसीव करने वाला ही नहीं हो, घर भी नहीं हो, इससे तो अच्छा है चार आदमी अंदर तो थे। हम इसलिए कहेंगे हमने सचपच जेल के अंदर जाके देखा है, एक माता ने कहा 14 साल का मेरे को सजा मिला कि मैंने मेरे पति को मारा था, मारा मैंने नहीं था, लेकिन अब मेरे को बाहर भेजेंगे, न मेरे पति के घर वाले आने देंगे, मैं उसके पौर में, न मेरे माता पिता तो मर ही गए, अब घर में कोई आने देगा, इसे अच्छा है यहीं बैठा हूं, बैठी हूं, 100 आदमी के लिए रोटी पकाती हूं, टाइम पास हो रहा है, बाहर क्या करूंगी जाके। नहीं जाते हैं जैसे, तो केवल मुक्ति से काम नहीं चलेगा। मुक्ति हो, बाहर निकलो जेल से, कोई मिलने वाला ही नहीं तो क्या करेंगे। तब कहते हैं सुखदेव गोसे, मुक्त संग परम व्रजेत। परम व्रजेत का मतलब, व्रजेत का एक अर्थ है आपको ऊपर के स्थान के ऊपर ले जाया जाएगा, और हम तो कहते हैं परम व्रजेत का मतलब सीधा ब्रज धाम में ले जाएगा भगवान, गोलोक वृंदावन पहुंचा देगा, कृष्ण का नाम पूछेंगे तो ब्रज में चले जाएंगे अपने आप। तो ये कृष्ण कीर्तन कल युग में सबसे बड़ा भगवान का कृपा है, बड़ी बेनिडिक्शन है। बीच में सिर्फ एक जगह हमने छोड़ा है, वो छोड़ा है भगवान श्री कृष्ण का अपने धाम जाना और पांडवों की रिटायरमेंट, इसके ऊपर चर्चा नहीं की अभी, बाद में आएगी तो बीच में कर लेंगे। और फिर परीक्षित महाराज वापस जाते ही दुख करने लगे कि मैंने एक संत का अपमान कर दिया, मेरे को दंड मिलना चाहिए नहीं तो कुल नाश हो जाएगा। घर में पहुंचा है तब तक सम्यक ऋषि ने अपने शिष्य को भेजा है, शिष्य ने आके कहा, किसी ने कहा महाराज बाहर कोई ब्राह्मण आए, महाराज ने नहीं कहा उसको बिठाओ मैं आके बात करूंगा, महाराज बाहर चले आए गेट के ऊपर। आते ही महाराज ने प्रणाम किया, ऋषि कुमार बोला हमारे गुरुजी ने कहा है कि महाराज हमारे अबोझ अनजान बेटे ने आपको शराब दे दिया है, 7 दिन के बाद तक्षक सर्प आपका घातक है, काल बनेगा, और हमारे गुरु महाराज ने कहा है आपकी सदगति हो, आप अपनी कोई व्यवस्था कीजिए। परीक्षित महाराज मुड़ के महल के अंदर नहीं गए, वहीं से सीधे गंगा जी के तट पे आए, और जैसे ही परीक्षित गंगा जी के तट पे आए फिर भी वो मैसेज सारे ऋषियों को पहुंच गया कि आज पृथ्वी के ऊपर परीक्षित जैसा महाराज सब कुछ परित्याग करके गंगा तट पे आया, चलो चलते हैं क्या होता है, जरूर कोई अद्भुत बात होने वाली है, मस्ट बी समथिंग स्ट्रेंज हैपनिंग देयर। सब ऋषि वहां आके बैठे हैं और परीक्षित कह रहा है मेरे से अपराध हो गया है राजा का, एक ऋषि का, अब मेरे को आप विष्णु कथा बताइए और बताइए कि अंत समय मैं क्या करूं। अब ऋषि सब कह रहे हैं, कोई सोच रहा है कि यज्ञ करेंगे, नहीं दान करना चाहिए। इतनी देर में सुखदेव गोस्वामी वहां आते हैं और कल फिर यहां से कथा आगे करेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद।